फिरायत नंबर 155 से 157 में नज़ूले कुरान मुश्रिकीन मक्का के लिए तमाम हुज्जता, यानी इनके ऊपर एक हुज्जत तमाम हो रही थी कि अल्लाह ने अपना नबी भेजा, उसके सीने पे एक किताब नाजिल की, वह हाज़ा किताबुन अन्ज़लनाहु मुबारकुन, ये बरकतों वाली किताब है जो हमने नाजिल की, बस तुम इसकी पैरवी करो और फिर तुम डरो, बच जाओ, तकवा अख्तियार करो ताकि तुम पे रहम किया जाए। और फिर कल ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन तुम ये कह दो कि अल्लाह ताला कोई हमारे पास नबी आता, कोई किताब आती, तो हम तो बड़े हिदायत वाले होते हैं। इसमें ज़रा सा अपने लिए अमल का नुक्ता लीजिए। हमें से अक्सर लोग बड़ी ख्वाहिश करते हैं अल्लाह कोई मौका लाए, कोई हमें पढ़ाए, हम कुछ सीखें, कोई ऐसा भी इंतज़ाम हो जाए ना। अब अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिशात को ऑनर देते हैं, आपके लिए इंतज़ाम कर देते हैं, सब कुछ होता है, तो क्या फिर सारे लोग उससे फ़ायदा उठा लेते हैं? नहीं उठाते। इवन कई वो लोग जो कह रहे होते हैं ये करो, वो ही नहीं आते। ये मैं अपने आप को 20-22 साल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। कई ऐसे लोग हैं जिनके कहने पे कोई काम शुरू किया जाता है और सैकड़ों लोग उससे फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन वो नहीं आते। तो यहाँ यही बात है कि हुज्जत तो तमाम कर दी, अब तुम मानो ना मानो। आप अपने बच्चे के लिए हर चीज़ रेडी कर दें, अब अगर उसने नहीं खाना तो फिर उसका नसीब है। कई लोगों को हिदायत की भूख ही नहीं होती, हिदायत की वो कदर ही नहीं करते। फिर इसके बाद आयत 158, अल्लाह की निशानी देखने के बाद ईमान लाना और अमल करना मुफीद नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जब पेपर आउट हो जाए तो उसके बाद बुक खोलना उसकी इजाज़त नहीं होती। जब एक दफ़ा पेपर दे दिया तो अब आप अपने रिजल्ट्स पे अपना कोई इख्तियार नहीं रखते। तो क़यामत के करीब जो चीज़ें होने वाली हैं उनमें से एक निशानी है, अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि क़यामत से पहले हर निशानी पूरी होगी, उसके बाद ईमान लाने की इजाज़त नहीं है। मसलन सूरज के मशरिक से मग़रिब की तरफ आने की बात है, तौबा का दरवाज़ा तब तक खुला हुआ है। हर चीज़ का एक टाइम होता है ना, एक टाइम बाउंड चीज़ है। तो आप कह सकते हैं कि हिदायत एक टाइम बाउंड चेक है। अगर आपने कैश ना कराया ना तो बाद में ये वैलिड नहीं रहेगा। तो आज तो अल्लाह ताला कायनात में बहुत सारी निशानियां में दिखा रहा है, इसके बाद भी अगर ईमान नहीं लाएंगे तो फिर बाद में कबूल नहीं होगा। फिर आयत 159 में फ़िरका परस्तों से रसूलुल्लाह का कोई ताल्लुक नहीं। देखिए इस आयत का आप नंबर ज़रूर नोट कीजिएगा। लोग खुद कहेंगे कि कहाँ लिखा है फ़िरके नहीं होने चाहिए, जमातें, मसलक गिरोह, यहाँ लिखा है 159 अलनाम इन्नल्लज़ीन फर्रक़ु दीनहुम। लफ्ज़ फर्रक़ु में फ़िरका लफ्ज़ छुपा हुआ है, जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। वकानु शियान, और वो आपस में अलग हो गए, गिरोह गिरोह हो गए। लस्त मिन्हुम फ़ी शय्इन, आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह, इनका मामला या इनका फैसला तो अल्लाह के तरफ है, फिर वो उनको बताएगा जो वो करते थे। तो क्या पता चला कि इस्लाम सीधा साधा दीन है, पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों को एक ही जितना अपील करता है। और अगर फ़िरके बनाने पसंदीदा काम होता तो सबसे ज़्यादा ये काम सहाबा कराम और उसके बाद के दौर के लोग करते। फिर इसके बाद आयत 160 में मौजू क्या है, बदला इन अमाल का मिलेगा जो मौत आने तक बाकी रहे। मन जा बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा व मन जा बिस्सैयति फला युज्जा इल्ला मिस्लहा व हुम ला युज़लमून। बहुत ही खूबसूरत असूल है। आपने एक मरूफ बात सुनी होगी कि मेराज के मौके पर अल्लाह के नबी को शुरू में 50 नमाजें ऑफ़र की गई थी और होते होते वो 5 रह गई। उस असूल को सामने रख कर मुसलमान के हर अमल की कम से कम जजा 10 है। आज हम पढ़ते 5 हैं और अल्लाह में इसकी तौफीक दे, लेकिन अजर वहाँ 50 का लिखा जाता है। इसी तरह अहले तौहीद का हर अमल 10 से मल्टीप्लाई होता है। क्या ये अल्लाह की रहमत नहीं? और जो अमल कर रहे हैं आज कर रहे हैं, मरते दम तक करेंगे इंशाल्लाह, उसमें अल्लाह की तरफ से कबूलियत होगी। और इकाइयाँ और दहाइयाँ, अब देखिए कि नेकी एक करते हैं तो 10 लिखी जाती है, गुना एक करते हैं तो एक ही लिखा जाता है। आपने फरमाया इतनी रहमत के बाद अब तो वही बंदा आग में जाएगा जिसने इरादा ही कर लिया। लेकिन आज भी देखिए कि हम एक नेकी के बदले में 10 से ज़्यादा गुना कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला हमें अपने लिए बेहतरीन फैसला करने वाला बना दे। फिर आगे 161 से 163 में टॉपिक क्या है, सिरात मुस्तकीम क्या है। हम सुबह शाम कहते हैं दिन सिरात अल मुस्तकीम, तो इस आयत में बता दिया कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरात मुस्तकीम दीनन क़ियमम मिल्लत इब्राहीम हनीफा। क्या पता चला कि सिरात मुस्तकीम हज़रत इब्राहीम के तरीके का नाम है जो मुशरिक नहीं थे। और कुल इन्नस्सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब सूरत के एंड की तरफ एक खूबसूरत पैगाम दिया जा रहा है, और वो क्या है कि इंसान का जीना अल्लाह के लिए हो तो इसका हर अमल, खाना पीना सोना कमाना, इबादत हो जाता है। आप घर की सफाई करती हैं, आपकी इबादत है, क्योंकि अल्लाह के नबी के हदीस सामने रखते हैं क्या है सफाई सुथराई दीन का हिस्सा है। सफाई निस्फ ईमान है, शत्रुल ईमान का लफ्ज़ है। तो क्या पता चला कि आपकी नीयत से आपका घर का हर छोटा बड़ा काम इबादत है। आप खाना बनाते हैं, क्या आपको इस खाना बनाने का अजर मिलता है? क्यों नहीं मिलता। आप इफ्तारी बनाती हैं, आप सहरी बनाती हैं, घर के एवरेज 6-7-8 लोगों को आप फीड करती हैं, आपको सबका अजर है। उनको अपने रोज़े का अजर है, आपको सबके रोज़े का अजर है। शर्त एक है कि उसमें खोकर नमाज़ें छोड़ना और बिल्कुल उसी को मकसद ना बनाना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर चीज़ का अजर देता है। मर्द कमाने के लिए निकलते हैं, अगर उनकी नीयत है कि हम अपने बीवी बच्चों और घर वालों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह वो भी इबादत है। और इंसान का मरना अल्लाह के लिए हो तो अपने रब के दीदार की तमन्ना दिल में होती है। तो अपने लिए ये स्लोगन बना लीजिए कि मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के इर्द गिर्द लेकर आना है। हम तवाफ़ में तो चक्कर काटते हैं खाना कबा के गिर्द, ज़िंदगी में आपका तवाफ़ अल्लाह की ज़ात के गिर्द होना चाहिए। जो अल्लाह ने कह दिया वो करना है, जिससे रोका उससे रुकना है। और फिर आयत 164-165 में रब्बे हकीकी अल्लाह ताला है। दुनिया में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, अल्लाह कहते हैं उनसे बच जाओ। कुला गैरल्लाह अबगी रब्बम व हुवा रब्बु कुल्ली शैइन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे प्रेशर डालते थे, हमारे इन बुतों को मानो, हमारे इन बुज़ुर्गों को बड़ा समझो, ये औलाद देता है ये माल देता है। तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं क्या मैं इतने प्यारे रब को छोड़कर तुम्हारी बात मानूँ? तो क्या पता चला कि रब्बे हकीकी अल्लाह ताला और वो मालिक भी है। दूसरी बात इस आयत से पता चलती है कि हर किसी को इसके अमल के मुताबिक बदला मिलेगा। और वला तज़ीरू वाज़िरतुम विज़्रा उख़रा, कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। तो इतने खूबसूरत पैगाम पे सूरत अल अनाम मुकम्मल होती है, जिसमें अल्लाह ताला ने आपको मुझे इस बात का यकीन दिला दिया है कि अगर तुम्हारी ज़िंदगियां साफ़ सुथरे तरीके से अल्लाह की रज़ा के गिर्द घूमेंगी तो इंशाल्लाह वो तुम्हारे लिए इस सारी चीज़ों में खैर डाल देगा। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमने इस सूरत में जो कुछ पढ़ा है जो समझा उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। इसके बाद अब दूसरी सूरत जो मक्की सूरत है वो सूरत अराफ़ है, और इसकी 87 आयात हम इस बारे में पढ़ेंगे। सूरत अराफ़ क्या है, या अराफ़ किसको कहते हैं, इंशाल्लाह जहाँ वो आयात आएंगी वहाँ बात करूँगी। लेकिन यहाँ हम चलते हैं इसकी पहली 3 आयतों पे। इसका टॉपिक है कुरान के मुकाबले में किसी और की पैरवी ना करो। सूरत शुरू होती है हरूफ मुकत्तात से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम स्वाद किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सद्रिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िर बिही वज़िक्रा लिल्मुमिनीन। क्या पता चला कुरान की खूबियाँ। इस कुरान को हकीकत में अगर आप और मैं अपनी ज़िंदगी की बहार बना लें, इस किताब के साथ अपने मामले को दुरुस्त कर लें, तो हमारी ज़िंदगियाँ इतनी हसीन हो जाएंगी जैसे ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ एक शख्स सांस सहूलत से लेता है ना। या अगर आपके मेरे लंग्स ठीक हैं, हमारे फेफड़े बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान आपको हकीकत में ज़िंदगी देता है। आप कहेंगे आप इतनी बात कुरान के बारे में कैसे कह सकती हैं? तजुर्बा मुशाहिदा 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब के इर्द गिर्द ही ज़िंदगी घूमती है। जो लोग भी अपने इर्द गिर्द में मैं पाती हूँ, उनमें से भी दुखी लोग, डिप्रेशन के शिकार, बीमार, परेशान, सुसाइड करने की ख्वाहिश, अल्हम्दुलिल्लाह एक ही दावत दी जाती है कि ठीक है आप ज़रा सा अपने आप को एक टाइम दीजिए, किताब से जुड़े, 2-3 महीने के बाद ज़िंदगी बदल जाती है। तो ये कुरान ऐसी प्यारी चीज़ है कि हमें इसको छोड़कर किसी और चीज़ के पीछे नहीं लगना। फिर उसके बाद आयत नंबर 4-5 में जालिमों के इंजाम से इबरत हासिल करो, ये मौजू है। कुछ अल्लाह के अजाबों के या अल्लाह ताला की तरफ से जो आफात आती है ना, उसका तज़किरा है। वह कम मिन क़रयतिन अहलकनाहा फ़जाअहा बासुना बयातन औ हुम क़ाइलून फ़मा कान दावाहुम इज़्ज़ाहुम बासुना इल्ला अन क़ालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। इसको पढ़ते हुए तो बिल्कुल जलजले का कोई मंज़र याद कीजिए, एकदम जलजला आया और लोग बिस्तरों से उठे और घरों से भाग रहे हैं, या कोई सुनामी जहन में ले आइए, कोई कैटरीना या रीटा नाम का कोई ऐसा समुद्री तूफान जो हर साल ही कमोबेश अमेरिका में लुइसियाना स्टेट में आता है, या फिर कोई और आफत। उस वक्त लोगों के चेहरों पे क्या होता है, घबराहट, और ज़ुबान पे लफ्ज़ क्या होते हैं, हम ही जालिम थे। उस वक्त लोगों को सब नाफरमानियाँ भूल जाती हैं। तो अल्लाह कहते हैं कि इससे पहले कि तुम पे कोई जलजला आ जाए, अपने आप को ठीक करो। और हकीकत है कि दूसरे के इंजाम से नसीहत लेने वाला ख़ुद बुरी चीज़ से बच जाता है। फिर इसके बाद रोज़े क़यामत बाज़पुरस हो के रहेगी, आयत 6-9 है। और ये बाज़पुरस सिर्फ आपकी मेरी नहीं होनी, अम्बिया कराम की भी होनी है। فَلَنَسْأَلَنَّ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, यानी जो भेजे गए और जिनकी तरफ भेजे गए सब का हिसाब होगा, और फिर हम उनको अपने इल्म के मुताबिक दिखाएंगे कि ये है तुम्हारा नाम अमाल, और हम गायब तो नहीं थे। अवल वज़्नु यौमा इज़िल हक़, उस दिन नामे अमाल का तुलना यानी मवाजीन ये हक है। फमन सकुलत मवाजीन फ़ौलाइकहुमुल मुफ्लिहून, जिसके पलड़े उस दिन भारी होंगे वो कामयाब है, अल्लाह हमें उनमें कर दे। वमन खफ्फत मवाजीन फ़ौलाइकल्लज़ीन खसिरू अनफुसहुम, और जिनके पलड़े हल्के हो गए उन्होंने अपनी जानों को खुद ही खसारे में डाल दिया, यानी उन्होंने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, और वजह यह थी कि वो हमारी आयतों पर जुल्म करते थे। तो आइए ज़रा देखते हैं कि मीज़ान बर हक है ये कैसे। पहली बात है कि क़्यामत के दिन हर इंसान से सवाल होगा, फिर दूसरी बात क़्यामत के दिन आमाल तो ले जाएंगे, फिर जिनके आमाल भारी होंगे वो कामयाब होंगे, और जिनके आमाल हल्के होंगे वो लोग बर्बाद हो जाएंगे। आप और मैं अपने लिए सोचें, आप देखिए कि एक छोटी सी मिसाल मैं देती हूँ कि हम अपनी छोटी छोटी नेकियों पे बहुत बड़े बड़े क्यास कर लेते हैं। आपकी मेरी नेकी अल्लाह के यहाँ तुलेगी, वज़न किसका ज़्यादा होगा, जिसमें इखलास ज़्यादा होगा, यानी लिल्लाहियत अल्लाह के लिए किया। आप यहाँ अल्लाह के लिए आई, आपने खाना खिलाया लोगों को तो अल्लाह की रज़ा के लिए खिलाया, और सो ऑन। दूसरी बात है किन हालात में आपने नेकी की। कुछ वक्त या कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके लिए नेकियाँ करना बहुत आसान है, लेकिन कुछ के लिए मुश्किल है। कौन कितनी दूर से आया, जो जितनी दूर से आएगा उसका अमल बढ़ेगा। अब जाहिर बात है कि अगर टैक्सी पे जाते हैं तो थोड़ी दूर जाएंगे तो कम पैसे देने पड़ेंगे, ज़्यादा दूर जाएंगे तो ज़्यादा। बिल्कुल इसी तरह ये सारी चीज़ें काम आती हैं। हमारा काम क्या है कि हम अपनी नेकियों पे फूले नहीं। मतलब देखिए, एक सिस्टर है, उनके पास 5 तोले का सेट है। वो कहती हैं कि मुश्किल पड़ी है, मैं इसको बेच देती हूँ, और ऐसे रफली अपने जहन में गेस करती हैं कि 5 तोले का सेट है, इसके अंदर ये 10 लाख का बिक जाएगा। वो जब सुनार के पास जाती हैं तो क्या आपका ख्याल है कि 5 तोले के ज़रब लगा कर वो 10 लाख दे देता है? नहीं, सबसे पहले वो डोरियाँ काटेगा, फिर वो नीचे लटकते हुए मोती काटेगा, फिर उसके अंदर जो नगीने चढ़े हुए उनको निकालेगा, फिर वो उसके अंदर से खोट निकालेगा, फिर नए और पुराने सोने का वज़न कम करेगा। वो जो 5 तोले के हिसाब से 10 लाख का सोच के लेके गई थी ना, बहुत भी अच्छा होगा ना कोई तो वो 5 से 6 लाख में दे दे तो बड़ी बात है। जिस तरह एक सोने का सेट बिकता है, अगर आपके मेरे अमाल को भी इसी तरह छान फटक के लिया गया तो कितनी ज़रूरत है कि हम देखें। इसीलिए पहले लोग कहते थे जड़ाओ जेवर नहीं बनाओ, जब देने जाते हैं तो नहीं मिलता। तो अल्लाह ताला आपके मेरे अमाल नामे को भारी कर दे। आयत 10 में टॉपिक क्या है कि तुम में से कम हैं जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, कलीलम मा तशकुरून, यानी नेमतों को उस तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते जैसे करने का हुक्म है, खाते अल्लाह का बात नहीं मानते, पहनते अल्लाह की दीवी नेमतों को नहीं उसकी कदर करते, खूब अच्छे कपड़े पहनते हैं तो और नाफरमानी करते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए कि हर नेमत इम्तिहान का पर्चा, जो मर्ज़ी खाइए, अल्लाह ने हलाल दिया है, ज़कात आपने दे दी, रिज़्क हलाल है, आम हालात में अभी इस्लाम को भी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है उस पैसे की उस माल की, खाइए पिए खुश रहिए और काम अच्छे कीजिए। अच्छी नेमतों को इस्तेमाल करके जब हम गलत काम करते हैं ना, ये जुर्म है। अल्लाह ताला आपको मुझे इससे बचा के रखे।